पृष्ठ संख्या 105, पंचवटी प्रसंग और यमुना के प्रति। निराला की सबसे पहली कविता पंचवटी प्रसंग है, जो उनके प्रथम संग्रह अनामिका की 9 कविताओं में शामिल की गई थी। अब यह परिमल के मुक्त छंद वाले तीसरे खंड के अंत में प्रकाशित है। पूरी कविता 5 भागों में विभाजित है और काव्य नाटक की शैली में लिखी गई है। पहले खंड में राम और सीता के गृहस्थिक संतुष्ट जीवन की झांकी है। दूसरे खंड में लक्ष्मण का एक आलाप है। संपूर्ण राम साहित्य में लक्ष्मण शायद पहली बार इस तरह एकांत मुखर हुए हैं। लेकिन इस एकांत मुखरता में लक्ष्मण के चरित्र में किसी नए अर्थ का समावेश निराला ने नहीं कराया है। वह वही भाई के भक्त लक्ष्मण हैं जो वाल्मीकि रामायण में हैं या रामचरितमानस और साकेत में हैं, बल्कि अपने इस एकालाप में लक्ष्मण इसी भक्त में बने रहने की प्रार्थना एकांत में करते से दिखाई देते हैं। तीसरे खंड में शूर्पणखा का आत्मलाप है। उसे अपने ही सौंदर्य पर मंत्रमुग्ध और गर्भोक्ति मुखर दिखाया गया है। इसमें भी कोई नई प्रसंग उद्भावना निराला ने नहीं की है। चौथे खंड में निराला ने राम और लक्ष्मण के आपसी संवादों द्वारा राम के मुख से लक्ष्मण को ब्रह्म ज्ञान, वेदांत और अद्वैतवाद की शिक्षा दिलवाई है। सृष्टि के प्रलय और निर्माण पर राम प्रवचन करते हैं। शायद यह खंड शिल्प की दृष्टि से उस अंतराल को भरने के लिए नियोजित किया गया है, जो शूर्पणखा के पहुँचने के समय व्यवधान के कारण पैदा हो गया है। इसमें भी वेदांत या प्रलय की कोई नई व्याख्या निराला प्रस्तुत नहीं करते। पांचवें खंड में शूर्पणखा के नाक कान काटने का प्रसंग है। पृष्ठ संख्या 106। दरअसल निराला की यह सबसे पहली लंबी कविता है। शायद रचनात्मक स्तर पर किसी ऐतिहासिक पौराणिक प्रसंग को क्यों कोई कवि फिर से उठाता है, यह निराला ने नहीं सोचा था। इसीलिए वह सीधे सादे ढंग से पौराणिक इतिवृत्ति को दोहरा भर गए। उसमें किसी नए अर्थ की उद्भावना का सवाल भी उनके दिमाग में नहीं उठा। मुझे लगता है कि इस कविता को लिखने की मूल प्रेरणा मुक्त छंद के पाठ प्रवाह की ओर पाठकों और लेखकों का ध्यान आकर्षित करना भर था। इस ओर निराला ने परिमल की भूमिका के अंत में संकेत भी दिया है। वह कहते हैं कि कवित्त छंद की जमीन पर मुक्त छंद की रचना सर्वाधिक सफल हो सकती है। इस संबंध में वह पढ़ने के अंदाज में आर्ट ऑफ रीडिंग की भी चर्चा करते हैं और यह भी बताते हैं कि इस तरह का एक नाटक लिखकर वह कलकत्ता रंगमंच पर खेल चुके हैं और प्रशंसा भी पा चुके हैं। मुझे लगता है कि पंचवटी प्रसंग की रचना की मूल प्रेरणा यही पाठ प्रक्रिया के प्रवाह का आनंद है। किसी नए अर्थ की प्रतिष्ठा कतई नहीं। इसकी भाषिक संरचना में वही आभिजात्य पारंपरिक तत्समता और विवरण प्रधानता है तथा शैली एकालाप और संवादों की है। इसका छंद कवित्त की जमीन को तोड़कर ही तैयार किया गया है। यही स्थिति यमुना के प्रति कविता की भी है। यह लगभग 17 पृष्ठों की सममात्रिक कविता है, यानी कि लगभग उतनी ही लंबी जितनी राम की शक्ति पूजा या सरोज स्मृति। लेकिन पूरी कविता पढ़ जाने पर भी किसी नए सर्वथा निजी या समसामयिक सामाजिक ऐतिहासिक चिंता या निर्णय से पूर्ण अर्थ की प्रतिष्ठा नहीं मिलती। पूरी कविता में कृष्ण के प्राचीन प्रसंगों लीलाओं के स्मृतिवाची प्रश्न हैं। इनका कोई उत्तर, कोई समाधान या उसके समानांतर उन प्रसंगों के अंदर किसी नए अर्थ की उद्भावना कहीं नहीं मिलती। पूरी कविता में भाषा का शब्द लास्य दर्शनीय है, उसका मार्दव संगीत और सहज आभिजात्य। लेकिन फिर भी उस भाषा को बिंब की भाषा के रूप में रूपायित वह नहीं कर पाए हैं। जो बिंबात्मकता है वह मात्र अलंकरण बनकर रह जाती है, बाकी उसमें निराला ने विवरण को घुसेड़ दिया है। पूरी कविता का टोन और उसका शिल्प पंत की कविता परिवर्तन की प्रारंभिक दो पंक्तियों द्वारा परिभाषित किया जा सकता है। कहाँ आज वह पूर्ण पुरातन, वह सुमरण का काल, भूतियों का दिगंत छवि जाल। यमुना के उसी पूर्ण पुरातन, उसी सुवर्ण काल, उन्हीं ऐश्वर्यपूर्ण लीला छवियों की महानताओं की स्मृति कवि बार बार करता है और स्मरण के आधार पर उनका अत्यंत मधुर लाक्षणिक अलंकृत वर्णन प्रस्तुत करता जाता है। इस नज़रिए से देखें तो यमुना के प्रति में कथा का कोई विकास नहीं मिलता, बल्कि कथा एक ही पृष्ठ संख्या 107 नुक्ते पर ठहरी हुई निष्पंद है और पूर्ण पुरातन की स्मृति ममाखियाँ उसके चारों ओर गुंजार करती हैं। कभी उस पर छत्ते बनाती हैं, कभी उड़कर दूर स्मृति का ताज़ा मधु बटोरने के लिए चली जाती हैं। पूरी कविता का शिल्प इसी रूप में ढाला गया है। वह सहसा सजीव कंपन द्रुत सुरभि समीर अधीर वितान, वह सहसा अस्तंभित वक्षस्थल तलमल पद प्रदीप निर्वाण। गुप्त रहस्य सृजन अतिशय श्रम, वह क्रम क्रम से संचित ज्ञान स्खलित वसन तनुसा तनु अमरण नग्न उदास व्यथित अभिमान। कहाँ छलकते अब वैसे ही ब्रज नागरियों के गागर, कहाँ भीगते अब वैसे ही बाहु उरोज अधर अंबर। दरअसल मुझे लगता है निराला अपनी शब्द शक्ति इस कविता में अजमा रहे हैं। शब्द शक्ति के द्वारा नई भाषिक संरचना उनका लक्ष्य यहाँ नहीं है, ना ही वह किसी नए अर्थ की प्रतिष्ठा की चिंता में व्यस्त हैं। वह कृष्ण के सारे मोहन प्रसंगों को अपने शब्द वैभव में बांधने की चेष्टा में रत हैं। इसमें वह सफल भी हुए हैं, लेकिन यह सफलता इस कविता को कोई नया महत्व प्रदान नहीं करती, क्योंकि भारतीय जनमानस के इस सर्वथा परिचित प्रसंग में किसी नवीन अननुभूत निजी या सार्वजनिक अर्थ की प्रतिष्ठा निराला ने नहीं की है। इस दृष्टि से प्रिय प्रवास, अंधायुग और कनुप्रिया में कृष्ण के इस आख्यान में अर्थ की अनेक नई संभावनाएं एकत्रित और प्रतिष्ठित की गई हैं। प्रिय प्रवास में कृष्ण का प्रवास लोक सेवा के निमित्त दिखाया गया है और यह पारंपरिक अर्थ को भ्रष्ट न करते हुए भी उसे एक नई अर्थवत्ता में प्रकाशित करता है। इसीलिए राधा भी यहाँ कृष्ण की प्रेरणा से लोक सेविका का रूप ग्रहण करती हैं। वह उन पुरातन अर्थों में जयदेव, विद्यापति या सुर की विरहिणी राधा नहीं है, ना ही वह कृष्ण कथा में बखानी गई कृष्ण की शक्ति रूपा राधा है। इसकी जगह एक साधारण संवेदनशील किंतु त्यागमय स्त्री के रूप में ही हरिओम ने उन्हें अधिक कल्पित किया है। वह पृष्ठ संख्या 108 कृष्ण के लिए रोती और छुतछाम नहीं होती, बल्कि कहती है कि प्यारे जावे जन हित करें, गेह चाहे न आवे। यह लोक सेवा हित राधा का त्याग उन्हें विद्यापति की विरहिणी राधा से एक दूसरे ही स्तर पर चरित्र सिद्ध करता है। इसमें कृष्ण और राधा का पारंपरिक व्यक्तित्व खंडित नहीं होता, बल्कि अर्थ की नई गरिमा से दोबारा प्रकाशित हो उठता है। व्यक्तिगत मनस्ताप तो है, लेकिन उसे सार्वजनिक स्थिति पर हावी नहीं होने देना चाहिए। हरिओद के भीतर से कृष्ण और राधा के आख्यान में इस नए अर्थ की प्रतिष्ठा गीता के कर्मवाद और उनके अपने समय में प्रचारित समाज सुधार आंदोलनों की उपज है। सामाजिक जन जागरण के इसी नैतिक उद्बोधन को हरिओद कृष्ण के आख्यान में प्रतिष्ठित करके एक सर्वथा नूतन अर्थ की सर्जना से इस नाना पुराण निगम आगम सम्मत कथा को नूतन करते हैं। प्रिय प्रवास पढ़ने पर अंततः राधा का कौन सा चित्र मन में उभरता है? सादे सफेद वस्त्रों में लिपटी एक गौर वर्ण की अधेड़ स्त्री का चित्र जो झोला लटकाए घर घर सेवा में घूम रही है, और कृष्ण सारी निजी मानसिक दुविधाओं को परे ठेल कर युद्ध की योजना में निमग्न है। परंपरित अर्थों और आधारों के भीतर से अर्थ का यह नया प्रकाश झलक मारता है। इसीलिए प्रिय प्रवास कृष्ण कथा के क्रम को आगे बढ़ाने वाली एक सर्वथा मौलिक रचना है, जबकि कृष्णायन एक अर्थहीन पुनरावृत्ति मात्र। यमुना के प्रति जैसी कविता में एक दूसरे कोण से नए अर्थ की प्रतिष्ठा की संभावनाएं तो बहुत थीं, लेकिन ऐसा कुछ भी निराला ने किया नहीं है। इसीलिए बावजूद अपने सारे नए शब्द वैभव के यह कविता प्रिय प्रवास से आगे की कविता नहीं है। कृष्ण और राधा के इसी आख्यान को भारती ने अपनी लंबी कविता कनप्रिया में उठाकर उसे फिर एक नई अर्थ संभावना दी है, लेकिन अर्थ का यह नया प्रकाश प्रिय प्रवास की तरह किसी सामयिक चिंता के साथ साथ एक शाश्वत चिंता से भी जुड़ा है। इसकी जगह राधा और कृष्ण के चरित्र के भीतर से शाश्वत नारीत्व और पुरुषत्व के बीच के अंतर संबंधों के भीतर से राधा की ओर से एक नया प्रश्न उठाया गया है। क्या स्त्री व्यक्ति के निजी जीवन और उसके सार्वजनिक कार्य क्षेत्र के बीच मात्र एक सेतु है जिस पर से होकर वह सार्वजनिक कर्म क्षेत्र में उतर जाता है और फिर कभी लौटने की फुर्सत नहीं पाता। वह अपने विराट कर्मों से एक नए इतिहास का निर्माण करता है। वह संपूर्ण राष्ट्र, संस्कृति, दर्शन और सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु बनकर उसका दिशा निर्देश करता है। वह संपूर्ण मानव नियति का नियामक पद ग्रहण कर सकता है। व्यक्ति की इस महत रचना में उसके लगातार ऊपर उठते उठते जाने में उस सेतु का क्या महत्व है जिस पर पैर रखकर वह आगे चला गया।